दिन। वरदान और मेहनत में क्या अंतर है? एक होता है बहुत मेहनत के बाद फल मिलना और दूसरा होता है निमित्त मेहनत और वरदान से सफलता। इस वर्ष जो यह दृढ़ संकल्प रखेंगे कि व्यर्थ संकल्प स्वप्न मात्र भी नहीं आए, ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे तो सफलता सहज अनुभव करेंगे। लाभ लेना चाहिए ना, देखेंगे कौन इस वरदानी वर्ष का फायदा लेता है। चाहे स्वयं प्रति भी जिस बात को मुश्किल समझते हो वो सहज अनुभव कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन मार्क को खत्म करो, क्वेश्चन मार्क सफलता प्राप्त करने में दीवार बन जाता है, इसलिए इस दीवार को खत्म करो। समझा? यह दृढ़ता सफलता की चाबी बन जाएगी, तो चाबी को यूज करो। चाबी यूज करनी आती है ना, चाबी है या खो जाती है, क्योंकि माया को भी यह चाबी अच्छी लगती है। देखो कोई भी कहां वार करता है तो पहले आपसे चाबी मांगेगा, तो माया भी पहले चाबी उड़ा लेती है। आप सोचेंगे मेरा संकल्प तो बहुत अच्छा था लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बीच से दृढ़ता की चाबी खो जाती है। चाबी संभालने में माताएं ज्यादा होशियार होती है। पांडवों को चाबी संभालनी आती है या कभी मिस कर देते? तो बाबा कह रहे हैं वरदान और मेहनत में क्या अंतर है? वरदान लॉटरी है, वरदान सहज मिलता है, मेहनत मेहनत है, मजदूरी है। एक होता है बहुत मेहनत के बाद फल मिलना और दूसरा होता है निमित्त मेहनत और वरदान से सफलता। इस वर्ष जो यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि कौन सा संकल्प, कि व्यर्थ संकल्प स्वप्न मात्र भी नहीं आए, यह दृढ़ संकल्प, ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे तो सफलता सहज अनुभव होगा। तो सफलता का आधार क्या कहा है यहाँ पर? दृढ़ता। कैसे लाएंगे दृढ़ता? संकल्प को दृढ़ कैसे करेंगे? निश्चय तो है ही है, बार बार रिपीटेशन। जो भी संकल्प करो उसको जब दृढ़ करना है तो वो संकल्प केवल एक दिन या एक क्षण का नहीं, स्वयं को थोड़ा टाइम देना है। जो भी बदलाव, जो भी परिवर्तन स्वयं में लाना है, क्योंकि हमको हमारे मन को कुछ समय उस संकल्प पर टिकाना पड़ेगा। तो जो बदलाव, जो परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंज हम अपने अंदर चाहते हैं, वो जो संकल्प है कुछ टाइम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एक हफ्ता प्रतिज्ञा करनी, अर्थात एक हफ्ता का टाइम दो स्वयं को और रोज उसी संकल्प के बारे में सोचो। संकल्प प्रतिज्ञा भी की नहीं है, प्रतिज्ञा करेंगे पर कब? एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते तक केवल उसके बारे में सोचना है कि वो जो संकल्प है उससे क्या क्या फायदे हैं, वो प्रतिज्ञा करने के बाद क्या क्या होगा। अच्छा, प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हैं? वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में नहीं है, उससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। कोई भी संकल्प को दृढ़ करने से पहले करना है तो अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने मन को उसके ऊपर स्थिर करना होगा, उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचना होगा। तो बाबा ने कहा संकल्प को दृढ़ करो। दृढ़ करने का एक तरीका है उसको, और दूसरा हर दिन उसको दोहराना, रिपीटेशन, रिविजन, बार बार उसको मन को बताना, क्योंकि मन भूल जाता है। एक बार संकल्प करने से नहीं होता है, एक बार संकल्प कर लिया कि मैं आज से व्यर्थ से मुक्त हो जाऊंगा, इससे मुक्त नहीं होंगे। क्यों मुक्त होना है, किस लिए मुक्त होना है? अच्छा, व्यर्थ अगर चलता रहा तो क्या नुकसान है जीवन में? कुछ फायदा है व्यर्थ से, व्यर्थ के फायदे लिखो फिर अगर है ऐसा लगता है मन को, क्योंकि मन की आसक्ति है व्यर्थ से, मन की आसक्ति है दुख से, दुखी होना मन चाहता है अंदर ही अंदर। ये एक विचित्र बंधन है कि मन को दुख प्रिय है, दुख से वो आसक्त है, कष्ट उसे प्रिय है कहीं ना कहीं, इसके लिए तो दुख छोड़ नहीं जाता है। वो जैसे कि ताक में बैठा है, 10 लोग उसको सुख दे रहे वो उसे याद नहीं है, किसी एक ने आकर कुछ कह दिया बस वही याद रखता है, तो ये तो दुख से ही आसक्ति हो गई ना, कष्ट से प्रेम हो गया। तो व्यर्थ से भी उसी तरह आत्मा को न जाने कोई एक अनजान सा प्यार है कि जो उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो अगर व्यर्थ से छोड़ना, व्यर्थ को अगर छोड़ना है तो संकल्प करना पड़ेगा और उस संकल्प के ऊपर मन को स्थिर करना पड़ेगा, स्वयं को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और बार बार रिपीट करना पड़ेगा, दोहराना। और कैसे करेंगे, किसी भी संकल्प को दृढ़ करना है तो उसको लिखना, लिखना, स्वयं को स्वयं बताना कि आज से या इस समय से इस पल से ये करने वाले हैं। जैसे विवाह आ रहे 16 तारीख को, 5 दिन है, अगर हम अपने अंदर कुछ चाहते किसी एक चीज को छोड़ना और किसी एक चीज को धारण करना तो वो संकल्प हम बाबा के सामने करेंगे, पर उसकी शुरुआत उसकी तैयारी आज से चालू करेंगे। जो भी संकल्प है आज से उसके बारे में सोचना केवल आरंभ करेंगे, बस सोचना, करेंगे नहीं अभी, करेंगे तब, अभी केवल इतना सोचो कि बस उसके बारे में सोचेंगे क्या करना है, किस कमजोरी को छोड़ना है, कौन सी कमजोरी है, आत्मनिरीक्षण, स्वनिरीक्षण, स्वचिंतन, और उसकी गहराई में जाना है, वो क्यों है, कितने समय से है और वो कैसी आई, किस रीति से वो कमजोरी अंदर प्रवेश की, कौन सा मार्ग था उसका, कौन सा वो घटना हुई जीवन में जिसके बाद उस कमजोरी ने जीवन में प्रवेश किया, और ये कौन सी बात है कि जिसने जीवन में हमको बार बार दुखी किया परंतु हम उसे छोड़ ही नहीं पाए, वो छोटी से छोटी सूक्ष्म बात हो सकती है। जितना हम सूक्ष्म होते जाएंगे, हमारा चिंतन सूक्ष्म होते जाएगा, तभी कमजोरी पकड़ में आएगी, उसके सिवा नहीं। तो लिखना भी एक साधन है कि जो दृढ़ करे, और रिपीट करना भी कब, 2 समय, एक तो अमृत वेला और रात में सोते समय, रिपीट करते करते संकल्प को रिपीट करते करते सो जाना, ताकि वो संकल्प और नींद, जैसे संकल्प नींद में खो जाए तो सुबह तक वो पहला ही संकल्प होगा। रात को जब हम सोते हैं, रात को सोने समय का आखिरी संकल्प ही अमृत वेले का प्रथम संकल्प होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि व्यक्ति कोई और विचारों में सो रहा है और कोई और विचारों में उठेगा। जिस संकल्प के साथ हम सोते हैं उसी संकल्प के साथ हम उठते हैं। टीवी देखते देखते सोएंगे तो वही संकल्पों के साथ उठेंगे, कोई किताब पढ़ते पढ़ते सोएंगे तो जो उस किताब में उसी संकल्पों के साथ उठेंगे, मोबाइल में कुछ करते करते सोएंगे तो उसी संकल्प के साथ उठेंगे, किसी से बात करते 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 और सो गए वही संकल्प चलेंगे। तो किस संकल्प के साथ हम सो रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और भी कुछ का विधि है संकल्प को दृढ़ करने की, योग में उस संकल्प को करना, योग में करना, योग की अशरीरी अवस्था जब होती है तब उसको बीच में याद करना एक बार, क्योंकि वो जो अशरीरी अवस्था होती है वहां पर चेतन मन संपूर्ण निष्क्रिय होता है और अवचेतन संपूर्ण एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, उस समय उस संकल्प का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होगा। तो कौन से टाइम करना, ये टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है, और स्वयं को टाइम दो, सोचो उसके बारे में, लिखो उसके बारे में, पढ़ो उसके बारे में, अपना ज्ञान बढ़ाना है उस चीज के बारे में, जिस चीज से हमें मुक्ति पानी है उस चीज के बारे में ज्ञान बढ़ाना है। अच्छा, और उस चीज से जिन्होंने अभी तक मुक्ति पाई उन्होंने किस किस विधि से मुक्ति पाई, उन उस विधि को भी ढूंढना है, चाहे किताबों से, चाहे लेक्चर से, चाहे प्रत्यक्ष पूछकर आपको अगर लगता है कि यह व्यक्ति उस कमी से मुक्त है जो कि मुझ में है, तो हम उससे पूछ भी सकते हैं कि तुमने इससे मुक्ति कैसे पाई। तो बाबा कह रहे हैं
दान प्रकाश जो मन समझो मेरे में अपवित्रता का छोटा सा सुख तो आप पवित्रता की
जो आपको लगता है अपने अंदर कमी है, जैसे स्वयं अगर दुखी रहते हैं तो दूसरों को खुशी देना चालू करो तो स्वतः ही खुश हो जाएंगे। जैसे मनोरिंद्रा दादी कहते हैं, जैसे मैं देखती हूँ कोई कन्या दुखी है तो उसको कहती हूँ जाओ 7 दिन का किसी का कोर्स कराओ, तो कोर्स कराते कराते ही दुख खत्म हो जाएगा, खुशी आ जाएगी। ज्ञान सुनाना आंतरिक खुशी उत्पन्न करेगा, चाहे स्वयं प्रति भी जिस बात को मुश्किल समझते हो वो सहज अनुभव कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन मार्क को खत्म करो, क्वेश्चन मार्क सफलता प्राप्त करने में दीवार बन जाता है। क्वेश्चन मार्क अर्थात होगा नहीं होगा, नहीं होगा ही, ऐसा ही होगा, हुआ ही पड़ा है, इसलिए इस दीवार को खत्म करो। समझा? यह दृढ़ता सफलता की चाबी बन जाएगी। तो सफलता के लिए, सक्सेस के लिए डिटर्मिनेशन की जरूरत है। जो जितना डिटर्मिंड है, जितना दृढ़ है, दृढ़ संकल्प है, समर्थ संकल्प जिसके पास है, कोई संशय नहीं है उस संकल्प में, उसका वो कार्य होगा ही, चाहे वो कमी उसमें कितने भी सालों से हो। परंतु अगर अभी दृढ़ संकल्प लिया तो उससे मुक्ति होगी। तो चाबी को यूज करो, चाबी है दृढ़ता। चाबी यूज करनी आती है, चाबी है या खो जाती है, क्योंकि माया को भी यह चाबी अच्छी लगती है। माया क्या करती है? तुम्हारा दृढ़ता को कम कर देती है। संकल्प तो करते हैं, प्रतिज्ञा तो करते हैं, व्रत तो रखते हैं, वचन तो देते हैं, परंतु ये उसके पीछे जो दृढ़ता है, संकल्प कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, फिर उसके साथ बहुत सारी चीजें करनी है, उसको रिपीट करना, दोहराना, लिखना, उसके बारे में चिंतन करना, मनन करना, उसके गहराई में जाना, फिर धीरे धीरे वो आएगा जीवन में, उसके सिवा नहीं। और होने के बाद में भी फिर उसको मेंटेन करके रखना, क्योंकि गिरने के चांसेस, मन चालाक है, चालबाज है, ऐसी चालाकी करता है कि बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े तपस्वी भी समझ में नहीं आता है मन क्या खेल खेल रहा है। ये इतने सालों की पवित्रता ऐसे खंडित हो जाती है कि जैसे समझ में नहीं आता ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कहां से माया आ गई, इतना ये सूक्ष्म है सारा खेल। देखो, कोई भी कहां वार करता है तो पहले आपसे चाबी मांगेगा ना, तो माया भी पहले चाबी उड़ा लेती है। आप सोचेंगे मेरा संकल्प तो बहुत अच्छा था लेकिन क्यों नहीं हुआ, परंतु हुआ नहीं, क्यों? और ये संकल्प जो हम कर रहे पहली बार नहीं कर रहे, शायद इसके पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, वो क्यों सफल नहीं हुआ? बिना उस सफल असफलता के कारण को ढूंढे, अगर अभी केवल संकल्प करा तो वापस असफल ही होगी, हमारी हार हुई है। जैसे दिखाते हैं लक्ष्मण की सबसे पहले हार हुई, लक्ष्मण की पहले हार हुई किससे? मेघनाथ से। मेघनाथ प्रतीक है काम विकार का, रावण प्रतीक है अहंकार का। तो सबसे पहले लक्ष्मण की हार दिखाई है, और फिर संजीवनी बूटी से वो जब जागृत हुआ उसके बाद में उसने पुनः व्यूहरचना बनाई अपने युद्ध की, अपनी रणनीति को बदला। उसको अहंकार आ गया था, उसको समझ में आया इस अहंकार ने उसकी हार, उससे उसकी वजह से उसकी हार हुई। फिर उसने पुनः युद्ध किया और फिर विजय हुई हुआ। तो हार तो होती है, यह हार चित्त का खेल है, बाबा ने कह दिया हार होगी, परंतु उस हार से सीखना है। क्यों हार हुई, क्यों असफलता हुई, कौन सी वो कमी रह गई थी जिसके वजह से असफलता हुई, और फिर हिम्मत नहीं हारना है, बस बार बार गिरना है, जितने बार गिरोगे उतने बार उठकर फिर चलना है, ये मार्ग ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं मेरा संकल्प तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच से दृढ़ता की चाबी खो जाती है, दृढ़ता कम हो जाती है, उसके प्रति जागरूकता सजगता कहीं तो चली जाती है, हम अलबेले आलस से जो आ जाता है एक प्रकार से। चाबी संभालने में माताएं ज्यादा होशियार होती है, बाबा सूक्ष्म को स्थूल से जोड़ते हैं। पांडवों को चाबी संभालनी आती है या कभी मिस कर देते हो? सभी का लक्ष्य सेवा के प्रति या स्व के प्रति बहुत अच्छा है, सिर्फ लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन रखना पड़ता है। कभी कभी एक बात मिस कर देते हो, अटेंशन की को उड़ा देते हो, अटेंशन की चाबी को उड़ा देते हो, तो क्या होता है? टेंशन। तो जहां टेंशन होता है ना, वहां मुश्किल हो जाती है, तनावग्रस्त स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो प्रतिज्ञा ली वो प्रतिज्ञा ही जैसे तनाव का कारण बन गया है, सहज नहीं हो रहा है। संकल्प तो कर लिया ऐसा करेंगे, परंतु जो प्रतिज्ञा ली, जो प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस ही अब मुश्किल हो गई है, उससे ही बेचैनी उत्पन्न हो गई है, ये कैसे इसको पूरी करें? क्योंकि वो केवल एक आवेश में ली हुई प्रतिज्ञा थी, ऐसी प्रतिज्ञाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। अटेंशन का भी टेंशन कर देते हो, रखना है तुमको अटेंशन, सावधान। बाप दादा कहते हैं अटेंशन रखो, अटेंशन रखो, तो अटेंशन को भी टेंशन में बदली कर देते हो। सदा यह स्मृति में रखो कि बाप दादा की सदा मदद अर्थात सहयोग का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा एक विजन दे रहे हैं, कौन सा? बाप दादा का वरदानी हाथ, वरद हस्त मेरे सिर पर है, और जो हमने प्रतिज्ञा की, जो हमने संकल्प किया, उसके लिए वो हमें शक्ति भर रहा है। यह चित्र सदा इमर्ज रूप में रखो। ऐसे बहुत सारे चित्र है जो हमको बीच बीच में याद रखने हैं, जैसे ये एक चित्र है जो हम देख रहे हैं, सूक्ष्म वतन में हम है, बाबा का हाथ हमारे सिर पर है, एक चित्र, विष्णु का चित्र, ये सब हमारी स्थितियों के चित्र है, शंकर का चित्र, तपस्वी का चित्र, कृष्ण का कालिया नाक के ऊपर का चित्र, ये सब हमारे यादगार है ना। तो इन चित्रों को सदा इमर्ज रूप में रखो। तो जिसके सिर पर बाप का हाथ है, उसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक है ही। किसी सेना को पहले ही यदि कोई ज्योतिष, महान ज्योतिष बता दे कि तुम्हारी ही युद्ध है या तुम्हारी ही जीत होने वाली इस युद्ध में, तो लड़ाई तो करेंगे, परंतु अंदर में एक नशा रहेगा कि विजय तो हमारी ही है, क्योंकि पहले ही बता दिया है। और ऐसे व्यक्ति ने बताया है कि जिसकी कोई भी भविष्यवाणी आज तक झूठी नहीं निकली है, उसने बता दिया है, तो क्या नशा रहेगा वो लड़ाई करते समय, पहले से ही, जैसे कि ये तो लड़ाई तो केवल निमित्त मात्र कर रहे। तो ऐसा भगवान ने भी पहले कह दिया कि तुम तो मायाजीत हो ही, भले माया ने तुमको कितनी बार भी हराया होगा, परंतु तुम ही हो और कोई दूसरा है नहीं। तो अपने मस्तक पर सदा विजय का तिलक नजर आता है या कभी मिट जाता है? कल भी बाबा ने कहा ना, हो जाएगा, ये डनलप पर सो जाते हैं, मस्तक पर ये संकल्प सदा रहे लिखा होगा कि होगा ही। जैसे बाप अविनाशी है, आप आत्माएं भी अविनाशी हो, तो यह विजय का तिलक भी अविनाशी है, कोई नहीं मिटा सकता इसको। विजय हमारी ही है, चाहे कितनी भी असफलता हो जाए, परंतु अपनी विजय पर निश्चय, होने दो असफलता, पर मेरी विजय होगी ही। अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह जितना रखते जाते हो, उतना सहज निर्विघ्न बनते हो, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है, खाली रहने से किसी और को आने का चांस है, और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। तो बिजी रहते हो कि थोड़ा बिजी रहते हो, थोड़ा खाली रहते हो, बुद्धि भी बिजी रहे, सिर्फ हाथ पांव नहीं, मन और बुद्धि का टाइम टेबल बनाना होता है। कई बार बाबा ने कहा अमृत वेले क्या करो, मन और बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, एक एक कर्म के साथ एक एक समान जोड़ना। यही सुबह ही देख लेना हमारी जो दिनचर्या है, हम कहाँ कहाँ बैठते हैं और कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, उस एक एक कर्म के साथ क्या क्या किया जा सकता है कि जिससे व्यर्थ ना आए। हम अपने केबिन में बैठे हैं, वहां क्या किया जा सकता है, यहां से वहां तक जा रहे हैं, वहां क्या किया जा सकता है। एक एक कर्म के साथ, छोटे छोटे कर्म के साथ कुछ ना कुछ समान जोड़ना। तो बाबा कहते हैं रोज बनाते हो या जब फुर्सत मिलती है तब बनाते हो।
स्विच ऑन ऑफ करके देखना।
जैसे कर्म का टाइम टेबल रोज बनाते हो ना, ऐसे मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आप सबसे बड़े थे बड़े ऊंचे थे ऊंचो। सबसे बड़े आदमी इस संसार में कौन है? हम। बाप तो बच्चों को आगे रखता है ना, तो जितने वीआईपी होते हैं वे क्या करते हैं? टाइम टेबल पर चलते हैं। तो आपसे ऊंचा सारे चक्र में कोई है? सारे चक्र में हमसे ऊंचा और कोई है? तो टाइम टेबल पर चलना पड़े ना। अच्छा, तो क्या कहा बाबा ने? एक तो संकल्प करो और उसके बाद में वरदान और मेहनत का अंतर ये निकालो, और उसके बाद में सफलता अगर सहज प्राप्त करनी है तो संकल्प को दृढ़ करते जाओ। और दूसरा अटेंशन। तो सफलता के लिए दो बातें, एक तो दृढ़ता और दूसरा अटेंशन। ये दो बातें अगर है तो सदा सफलता है। अटेंशन टेंशन ना बन जाए। और कौन सा चित्र सदा इमर्ज रखो? कि भगवान ने अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया। दिखाते हैं ना शंकराचार्य, 8 साल का शंकराचार्य जा रहा है खोज में अपने गुरु के, यहाँ से वहां भटक रहा है, वहां से वहां भटक रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। कितना ढूंढा ढूंढा ढूंढा, फिर किसी से मिला, उसको लगा कि ये मेरे गुरु। पर उसने कहा मैं नहीं हूं, तुम्हारा गुरु तो उस गुफा में बैठा है, जाओ वहां। वो वहां जाता है, गुरु ध्यान मग्न है, 3 दिन गुरु के सामने ही बैठा रहा। और जब गुरु ने आंखें खोली तो कहा कि शंकर तुम आ गए। जैसे कोई वो गुरु उसकी प्रतीक्षा कर रहा था और गुरु ने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया और सारी अष्ट सिद्धियां दे दी उसको, अष्ट शक्तियां दे दी। जिस एक एक शक्ति को पाने के लिए न जाने कितने सालों तक योगियों को प्रयत्न करना पड़ता है, ऐसी शक्तियां उसको दे दी। वो गया, उसने कहा तुम आ गए, हाथ रखा केवल और सारी शक्तियां, एक एक शक्ति अर्थात परकाया प्रवेश करना, आकाश गमन करना, दूर ध्वनि सुनना, ऐसी एक एक शक्तियां, जो चाहिए वो प्राप्त करना, शरीर को छोटा करना, शरीर को बड़ा करना, हल्का हो जाना, भारी हो जाना, ये सारी एक एक दिव्य शक्तियां सब दे दी। तो हम भी बाबा के पास गए सूक्ष्म वतन में, बाबा ने कहा आ गए कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहां थे तुम? और बाबा ने अपना वरदानी हस्त हमारे सर के ऊपर रख दिया और कहा कि ये लो, आज से मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। और फिर शंकराचार्य ने दुनिया में बड़े बड़े काम कर दिए। हिंदू धर्म जो कि खोने वाला था बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण, पुनः जागरण का कार्य किया हिंदू धर्म का, बड़े बड़े काम कर दिए उसने अपने गुरु की शक्तियों के आधार से। ऐसे ही दिखाते हैं जब राम रामायण में वनवास में है तो जिस किसी भी आश्रम में जा रहा है सबको पता है ये कौन है और किस लिए अवतरित हुआ है। तो सभी ऋषि मुनियों ने जिस आश्रम पर श्री राम गए अपना हाथ, अपनी सारी शक्तियां राम को दे दी, क्योंकि उसे बड़ा काम करना था ना, रावण को खत्म करना था। तो बाबा ने भी अपनी सारी शक्तियां हमें दे दी, उसका हाथ हमारे सिर पर है। एक तो ये विजन और दूसरा तिलक, तिलक लगा रहा है हमारे सर, मस्तक पर तिलक लगा रहा है। कौन कौन से तिलक लगा रहा है? विजयी भव का तिलक, एक जो चाहिए वो सब हम ले सकते हैं। एक तो विजय, विजय किस पर? विकारों पर विजय। दूसरा सफलता मूर्त भव, सफलता हर सेवा में, हर कार्य में, और तीसरा स्मृति स्वरूप कवि या सबसे महत्वपूर्ण निर्विघ्न भव। ये तीन तिलक रोज अमृत वेला बाबा से लगाने हैं और उसका वरदानी हाथ अपने स्वर के ऊपर अनुभव करना है। उसने क्या क्या दे दिया, एक तो शक्तियां दे दी, एक दूसरा संपूर्ण पवित्रता जैसे व्यक्ति दे दिया हम, और तीसरा ज्ञान। उसने अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रख दिया और संपूर्ण ज्ञान दे दिया, जैसे दिखाते हैं भक्त प्रह्लाद का, प्रह्लाद ने ध्रुव, और ध्रुव इतना छोटा है कि बस उसको नारद ने कह दिया कि अगर तुमको तुम्हारे पिता के गोद में बैठना है तो नारायण की भक्ति करो, वो अगर प्रसन्न हो जाए तो तुम तुम्हारे पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो बस भक्ति करने लगता है, नारायण प्रसन्न हो जाते हो, रहते बोलते मांगो। अभी वो छोटा, इतना छोटा बच्चा है, बोलते उसको तो बोलने ही नहीं आता है, क्या बोलू, क्या मांगेगा वो। तो उसमें दिखाया है कि भगवान स्वयं अपना शंख जैसे उसके होठ को लगाते और उसको अपनी शक्तियां देते कि अब तू बोल, मतलब उसको स्तुति भी करने नहीं आती है तो वो अपनी ही शक्ति उसको देता है कि अब तू मेरी स्तुति कर, तो वो अपनी ही शक्ति उसे देता है, तो संपूर्ण ज्ञान उसको दे देता है जैसे। तो बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सर के ऊपर रखा, एक सर्वशक्तियां दे दी, दूसरा संपूर्ण ज्ञान दे दिया, जिस ज्ञान को धारण करने के लिए न जाने कितनी मुरलियां पढ़नी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, फिर भी भूल जाता है, इतना सब कुछ करना पड़ता है ज्ञान को धारण करने के लिए, केवल कई सालों का अभ्यास लगता है। और यहां रोज क्या कर दिया बाबा ने, बस हाथ रख दिया और सारा ज्ञान हमारे अंदर आ गया केवल उसके हाथ रखने से। वो तो कुछ भी कर सकता है ना, मुकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम, पंगु भी पार चढ़ जाता है, मुख भी बोलने लग जाता है, जो वो कर सकता है वो, उसने हाथ रख दिया, भले हम अभी अभी ज्ञान में आए परंतु उसने हाथ रखते ही सारा ज्ञान हम में आ गया। तो दूसरा ज्ञान और तीसरा संपूर्ण पवित्रता, उसने हाथ रखा और संपूर्ण पवित्रता हमें, हमारे अंदर प्रवेश कर गई, हाथ रखा और ये तीन काम कर दिए और मस्तक पर तिलक दे दिए, विजयी भव। अनुभव करना है कि मैं हर विकार पर विजयी हूं। दूसरा सफलता मूर्त भव, जहां हम जाएंगे सफलता वहां आएगी ही, होगा ही, ऐसा हो नहीं सकता कि हम कुछ करें और उसमें सफलता ना हो, अगर हुई तो आश्चर्य है ये कैसे हो गया। और तीसरा निर्विघ्न भव, फिर जो चाहे वो, तीन मुख्य, फिर आपको स्मृति स्वरूप भव, मास्टर सर्वशक्तिमान, जो लेना है उतना ले लो, पर ये काम रोज और नियमित करना है। सूक्ष्मवतन में जब भी हम हैं तो बाबा से ये तीन वरदान लेना और तिलक लगा लेना है रोज। तो सबसे ज्यादा इस आप से ऊंचा सारे चक्र में कोई है, कोई नहीं है, हम सबसे महान है इस संपूर्ण चक्र में, तो इसके ऊपर चिंतन करना। अच्छा, ओम शांति।